उसको अगर समझ लिया उसने, बड़ी अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक अध्ययन किया और उसको समझ लिया, वो बोले कभी भी वो व्यक्ति कम से कम इस कारणवश, सिद्धांत के कारणवश कि इसमें कुछ उतना ऊंचा चीज नहीं है, मुझे अब एक बहुत ऊंचा चीज कोई एक गुरुजी या कोई एक साधु प्रदान कर रहा है उसकी खोज में जाएगा, ऐसा नहीं जाएगा कभी कम से कम। और लगातार शायद 3 या 3.5 महीने तक पहले 3 अध्याय के ऊपर चर्चा हुआ, पहले 4 अध्याय चैतन्य महाप्रभु का जो है पहला 4 अध्याय के ऊपर, उसके बाद नित्यानंद प्रभु के बारे में, अद्वैताचार्य के बारे में, पंचतत्व के बारे में। तो बोले पहला 4 अध्याय अगर ध्यान पूर्वक भक्तों के संग में चर्चा करके अगर समझ जाए तो कम से कम इस कारण से वो भक्ति छोड़ के नहीं जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय इस्कॉन संस्था को छोड़ के नहीं जाएगा। कि ये कि प्रभुपाद ने कुछ ऐसा चीज नहीं दिया है जो कोई और दे रहा है, इस कारण कम से कम वो छोड़ के नहीं जाएगा। तो आज हम पहला अध्याय शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे जितना होगा उतना चर्चा करेंगे, पर खास करके चैतन्य चरितामृत में जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य हैं बहुत ही कभी कभी डायरेक्टली जैसे मानो हम बात कर रहे हैं ऐसा, बहुत ही इंटीमेट रहता है। तो पहला अध्याय का शीर्षक है गुरुगण, स्पिरिचुअल मास्टर्स, गुरुगण। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहि अन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं राधा और कृष्ण दोनों के एक स्वरूप हैं, वो अभिन्न नहीं है, और वो ऐसे भक्तों के प्राण धन हैं। चैतन्य महाप्रभु ऐसे भक्तों के प्राण धन हैं जो बड़े सख्त तरीके से श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्हों पे अनुसरण करने की इच्छा रखते हैं, रूपानुगम। श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी दो प्रमुख अनुयायी थे स्वरूप दामोदर गोस्वामी के। यहां बता रहे हैं कि ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ की रचना कैसे हुई, ये यहां बता रहे हैं कि महाप्रभु के अनुयायी जो हैं रूपानुग, क्योंकि जैसे हमने चर्चा किया थोड़े दिन पहले पिछली बार, श्री चैतन्य मनो अभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। श्री चैतन्य मनो अभिष्टम, चैतन्य महाप्रभु की मन की जो इच्छा थी उसको स्थापना किया, मनो अभिष्टम मन की बात को जानकर स्थापितम येन भूतले, पूरे विश्व में प्रसारण करने के लिए जो भी जरूरत है वो सब दे दिया है रूप गोस्वामी। सो रूपानुग जो है, हम महाप्रभु के अनुयायी रूपानुग हैं, तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी शिला स्वरूप दामोदर गोस्वामी के प्रमुख अनुयायी थे वो लोग। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी कौन थे? स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग सेवकों में से एक थे। आप लोगों को मालूम होगा जब श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके आए, जगन्नाथपुरी आ गए, 18 साल तक उनके सबसे निकटतम सेवक स्वरूप दामोदर गोस्वामी थे। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की अंदरूनी हृदय को जानते थे, हृदय की बात जानते थे, फर्स्ट क्लास सर्वेंट। जब महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने उनको अलग अलग प्रकार के भावना उत्पन्न होते थे तो एग्जैक्टली उनकी भावना क्या है ये जानकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी एक श्लोक सुनाते थे भागवत से। मतलब एक क्या जरूरत है उनको बोलने से पहले क्या भावना अनुभव कर रहे हैं, क्या मन में सोच रहे हैं, ये स्वरूप दामोदर गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु के हृदय की अंतरंग की बात जानते थे। اور اسی لیے ترنت وہ ایسا کوئی شلوک سنا دیتے اور اتنے سندر سے گا کے سنا دیتے کہ مہاپربھو کی جو دیویا آنند ہے اور بڑھنے لگتا تھا. تو اس طرح سے چیتنیہ مہاپربھو کو جاننے والے 3.5 بھکت ہیں بس, اور ان میں سے سوروپ دامودر گوسوامی ایک ہے. چیتنیہ مہاپربھو کو جاننے والے بہت کم انترنگ ہردے کی بات, ان میں سے ایک ہیں سوروپ دامودر گوسوامی. تو سوروپ دامودر گوسوامی کے انویائی تھے روپ اور سناتن گوسوامی. چیتنیہ مہاپربھو جو اپنے بالپن میں وشومبر نام سے پرسدھ تھے, اور روپ گوسوامی اور رگھوناتھ داس گوسوامی کے اور روپ گوسوامی کے شیشیہ تھے, مطلب انویائی تھے ڈائریکٹ رگھوناتھ داس گوسوامی, ڈائریکٹ ڈسائپل روپ گوسوامی کے شیشیہ تھے رگھوناتھ داس گوسوامی. اور شری چیتنیہ چریتامرت کے جو لیکھک ہیں کرشناس کویراج گوسوامی, وہ روپ اور رگھوناتھ داس گوسوامی کے ڈائریکٹ شیشیہ تھے, ان سے انہوں نے شرون کیا, ان کے انومتی کے انوسار کرشناس کویراج گوسوامی نے شری چیتنیہ چریتامرت کی رچنا کی. تو اس طرح سے یہ کرشنداس کویراج گوسوامی کی جو چیتنیہ چریتامرت کی جو رچنا ہے یہ ڈائریکٹلی اس پرمپرا میں آیا ہوا ہے, اس میں کوئی من گھڑت اسپیکولیشن کی بات نہیں ہے. جو سوروپ دامودر گوسوامی نے دیکھا, انوبھو کیا, اسے لکھا, وہ روپ اور سناتن ان سے شرون کیے, ان سے رگھوناتھ داس گوسوامی جو ہمیشہ وہاں رہتے تھے, رگھوناتھ داس گوسوامی ساتھ رہے, انہوں نے سنا. اور وہ جب برنداون آئے آتم ہتیا کرنے کے لیے, بولے ابھی مہاپربھو چلے گئے, ابھی کیا کروں گا میں, بس ابھی اس میں سے کود جاؤں گا میں گووردھن پروت سے. پھر روپ اور سناتن نے بولا, نہیں, تم نے اتنے سال سوروپ دامودر گوسوامی کے ساتھ یہ سب سنے ہو, دیکھے ہو مہاپربھو کی لیلائیں, اب آپ ہر روز سناؤ سب کو, اور دن میں جیسا جیسا ہم لوگ 16 مالا کا نیم ہے ویسا ان کا نیم تھا, کم سے کم 3 گھنٹہ کرشنداس رگھوناتھ داس گوسوامی چیتنیہ چریتامرت سناتے تھے, جو ڈائریکٹلی سوروپ دامودر گوسوامی کے لکھے ہوئے کڑچا اس میں سا نوٹس تھا ان کا, وہ سناتے تھے. اور جب یہ سناتے تھے تو کرشنداس کویراج گوسوامی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے سنا, اور انہوں نے جیسا ہے اسی لیے ہر شلوک اور روپ گوسوامی کے انسٹرکشن کے انوسار آگیا کے انوسار انہوں نے لکھنا شروع کیا. نہیں تو کرشنداس کویراج گوسوامی اپنے آپ کو بہت ہی نمر مانتے تھے, بولے میں تو ایک وشٹھا میں پڑے کیڑے کے سمان ہوں, میں کیا ایسا گرنتھ لکھوں. پر جب گوسوامیوں کا آگیا ہوا, اسی لیے وہ کہتے ہیں ہر ایک ادھیائے کے انت میں کہتے ہیں شیرو پر گھناتھ پدے یاراس چیتنیہ چریتامرت کہے کرشنداس, بولے میرے کو یار کوئی یوگتا نہیں ہے, بس روپ رگھوناتھ پدے یار آش, میرا یہی اچھا ہے بس روپ رگھوناتھ کی آگیا کے انوسار ان کی پرسنتا کے لیے ان کے کہے جانے کے کارن میں یہ سب لکھ رہا ہوں, نہیں تو میں 90 سال 93 سال کا آدمی ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, آنکھ ٹھیک سے دکھتا نہیں, ہاتھ ہلتا رہتا ہے, بدھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے. ایکچولی یہ جو لیکھک ہے, یہ جو لکھنے والے ہیں, وہ تو چیتنیہ مہاپربھو ہی ہیں, میں صرف ایک نمت ہوں بس, نہیں تو میرے کے اندر کوئی یوگتا نہیں. نتیانند پربھو کی کرپا ہوئی مجھے, انہوں نے مجھے برنداون میں بھیجا, بولے سب منگل میں سب ہو جائے گا, تم صرف جاؤ برنداون, اور ان کے انوسار میں لکھ رہا ہوں. تو اس طرح سے اور پھر لکھتے ہیں پربھوپاد جی جو لکھ رہے ہیں وہ بھی کیوں لکھ رہے ہیں, وہ لکھ رہے ہیں اس کے شروعات میں ڈائریکٹ ڈسائپل آف کرشنداس کویراج گوسوامی واز شیلا نروتم داس ٹھاکر. کرشنداس گوسوامی کے ڈائریکٹ شیشیہ تھے نروتم داس ٹھاکر, جنہوں نے وشوناتھ چکرتی ٹھاکر کو اپنے سیوک کے روپ میں سویکار کیا, اور وشوناتھ چکرتی ٹھاکر نے جگنناتھ داس بابا جی جن کے شیشیہ تھے بھکتی ونود ٹھاکر, جن کے شیشیہ تھے گور کشور داس بابا جی, جو श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुरु थे, और जो हमारे हम जैसे हमारे नम्र गुरु, हमारे गुरु हैं। इस तरह से भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं। और क्योंकि हम इस चैतन्य महाप्रभु के इस परंपरा में आए हैं, ये चैतन्य चरितामृत का जो एडिशन है, हम जो लिख रहे हैं इसको, इसमें अपनी बुद्धि से आई हुई कोई भी चीज हम नहीं लिख रहे हैं। नॉट विल कंटेन नथिंग न्यूली मैन्युफैक्चर्ड बाय आवर टाइनी ब्रेन्स। हमारे तुच्छ 450 ग्राम का जो ये भेजा है, इसमें से बनाया हुआ, मैन्युफैक्चर किया हुआ कुछ जहां नहीं डाला हुआ मैंने। प्रभुपाद लिखते हैं, जैसा सुना है, जैसा मैंने तात्पर्य सुना है, और उसको मैं वहां आपको प्रदान कर रहा हूं। बट ओनली रेमनेंट्स ऑफ फूड ओरिजिनली ईटन बाय द लॉर्ड हिमसेल्फ, चैतन्य महाप्रभु। मतलब उच्चिष्ट जो चैतन्य महाप्रभु ने आस्वादन किया, जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसको समझकर लिखा और रघुनाथ दास गोस्वामी को सुनाया, और जिन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को सुनाया और जो लिखे हैं, उसी का आस्वादन इस परंपरा में मैंने जो सुना है और आचार्यों का तात्पर्य सुना है, उसी को उस जो कुछ उच्चिष्ट है उसका मैं आस्वादन कर रहा हूं, जो चैतन्य महाप्रभु ने किया और आपको हम ये दे रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जो हैं, वो इस भौतिक संसार के तीन गुणों से पूर्ण रूप से परे हैं। वो दिव्य स्तर से हैं, जहां एक भौतिक जीव का जो बुद्धि है या भौतिक बुद्धि, वो नहीं जा सकता। बड़े बड़े विद्वान भी इस दिव्य स्तर को जान नहीं पाएंगे जब तक अपने आप को नम्रता पूर्वक इस दिव्य शब्द को स्वीकार करने के लिए सही तरह से वो श्रवण नहीं करेंगे। फॉर इन दैट मूड ओनली कैन वन रियलाइज द मैसेज। उस भावना के बिना, नम्र तुच्छ भावना के बिना, श्रवण किए बिना, ये कृष्ण का ये चैतन्य चरितामृत जो है, कभी हमारी बुद्धि के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। हृदय तो दूर की बात, बुद्धि के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो जहां जो भी यहां वर्णन किया जा रहा है, वो अपनी बुद्धि से बनाए हुए कोई भी चीज या मानसिक मनोगणन बात जो है, वो सब इसमें नहीं है। सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव जो परंपरा में स्वीकार किया हुआ है, उसी का वर्णन हो रहा है। एनी डिविएशन फ्रॉम दैट लाइन विल बिविल्डर द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मिस्ट्री ऑफ चैतन्य चरितामृत। अगर थोड़ा भी व्यक्ति उस परंपरागत पूर्ण रूप से नम्रता से अपने आप को अलाइनमेंट, जैसा अलाइनमेंट बोलते हैं ना कभी कभी, थोड़ा अलाइनमेंट में इधर उधर हो गया तो गाड़ी इधर उधर चल जाएगा, तो बोले एकदम परफेक्ट अलाइन में ही हुआ, तो क्या होगा? श्री चैतन्य महाप्रभु का जो रहस्य है, चैतन्य चरितामृत का जो रहस्य है, वो व्यक्ति वो नहीं समझ पाएगा। वो जो पूर्ण रूप से दिव्य ग्रंथ है और जो वैदिक ग्रंथ उपनिषद वेदांत सूत्र जिसने अध्ययन किया है, उसका पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, उपनिषद और वेदांत सूत्र तो ग्रेजुएट स्टडी हो गया गीता के बाद, और उसका पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है चैतन्य चरितामृत। जो श्रीमद् भागवतम का नेचुरल कमेंट्री है, उपनिषद इत्यादि वेदांत सूत्र का नेचुरल कमेंट्री है श्रीमद् भागवतम एंड गीता, उसका पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है चैतन्य चरितामृत। तो कभी कभी लगता है कि बाप रे, कभी हम लोग निरुत्साह हो जाते हैं, चैतन्य चरितामृत कभी पढ़ पाएंगे क्या हम लोग कभी? पता हमारे लिए है ही नहीं, हो तो पोस्ट ग्रेजुएट है, हम लोग तो ABCD भी पढ़ रहे हैं। नहीं, पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य के साथ साथ पढ़ेंगे, भक्तों के संग में, प्रामाणिक भक्तों के संग में आकर श्रद्धा पूर्वक तीव्रता से जानने की इच्छा रखते हुए, महाप्रभु की प्रार्थना की याचना करते हुए अगर पढ़ेंगे तो ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव करेंगे। सच्चा आध्यात्मिक जीवन क्या है, इसका अनुभव हमको तब होगा। नहीं तो आध्यात्मिक जीवन जो है, بہت دور کی بات رہ جائے گی. اپنے آپ ہم لوگوں کو لگے گا ہم بہت بڑے پہنچے ہوئے بھکت ہو گئے ہیں, پر ہم کو چھوئے گا بھی نہیں سچا آدھیاتمک دیویا آنند جو ہے, وہ چھوئے گا بھی نہیں ہمارے ہرے کو. This edition of Sri Chaitanya Charitamrita is presented for the study of sincere scholars. جو پرامانک ودوان لوگ ہیں, جو ودوت اچھی طرح سے مطلب گیان پراپت کرنا چاہتے ہیں, آدھیاتمک گیان کو پراپت کرنا چاہتے ہیں, who are really seeking the absolute truth, جن کی اچھا ودوتا کے لیے نہیں ہے, جن کی اچھا ہے کہ پرم ستیہ کو ہم کو پورن طریقے سے جاننا ہے, ایسے ویکتیوں کے لیے یہ چیتنیہ چرتامرت ہے. It is not the arrogant scholarship of a mental speculator. بڑے بڑے ودوتا, ایک بڑا بڑا ودوان آدمی کا ودوتا یہاں پردرشت نہیں کیا گیا ہے, بٹ اے سنسیئر ایفرٹ ٹو سرو دا آرڈر آف اے سپیریئر اتھارٹی. کیونکہ بھکتی سدھانت سرستی ٹھاکر کی آگیا تھی پربھوپاد جی کو کہ تم بڑے پڑھے لکھے ویکتی ہو, تم شری چیتن مہاپربھو کے سندیش کو وشو بھر میں پرچار کرو, خاص کر کے انگریزی بھاشا میں. ان کی آگیا کے انوسار پربھوپاد جی چیتنیہ چریتامرت کو آفرنگ کس کو کہتے ہیں, پریزنٹڈ ٹو مائی فرینڈس اینڈ ڈیووٹیز ہو لائک ٹو ریڈ مائی بکس اینڈ ہو اپروچ می ٹو ریکویسٹ دیٹ آئی رینڈر دا گریٹ چیتنیہ چریتامرت انٹو انگلش. ان میرے متروں کی پرسنتا کے لیے اور ان بھکتوں کی پرسنتا کے لیے جو میرے پستک پڑھنے کی بہت اچھک ہیں اور جنہوں نے میرے پاس نویدن کیا کہ آپ کرپیا چیتنیہ چریتامرت بھکتی ویدانت تاتپریہ بھکتی ویدانت پرپورٹس آپ انگریزی بھاشا میں لکھی, کیونکہ پاشچاتیہ پربھوپاد جی کے جو شروع کے انویائی جو تھے کیسے سب سمجھیں گے اتنی گوڑھ رہسیہ کی بات, اور کچھ ایسے بھی انگریزی کے ٹرانسلیشن تھے جو سر کے اوپر سے جاتا ہے, کچھ سمجھتا ہی نہیں, انگریزی بھی نہیں سمجھتا تھا, بہت مشکل ہے. اور پربھوپاد جی نے ایسے بھاشا میں دیا اس کو, کوئی بھی ویکتی کسی بھی استر کا کہیں بھی کیوں نہ ہو آسانی سے سمجھ پا سکتا ہے, اس کا آسوادن کر سکتا ہے, اپنی جیون میں اتار سکتا ہے, اور نہ کیول اتنا بلکہ پرچار بھی کر سکتا ہے. کرشن شکتی بنا نہ ہی تار پرورتن, اچھا ہو تو بھگوان چیتنیہ مہاپربھو کی کرپا سے وہ ویکتی پورے ہمارا آگے گرو ہوئی تارو دیش ہو سکتا ہے. پھر اب پھر کہتے ہیں سپیریئر اتھارٹی ہوز سروس از دا لائف اینڈ سول آف دس ہمبل ایفرٹ, ان کی آگیا کا پالن گرو مکھ پدم واکیا چیتے تے کریو آئکیا آرنا کریو منے آشا. میرے بڑے بڑے لکھنا کہ اتنے میں نے اتنے گرنتھوں کی رچنا کی ہے, یہ 60 والیوم میں نے لکھا ہے, اس کی اچھا نہیں مجھے. گرو مکھ پدم واکیا میرے گرو نے کہا ہے ان کی پرسنتا کے لیے, کیونکہ جنہوں نے کہا کہ چیتن مہاپربھو کے سندیش کو انگریزی بھاشا میں پورے وشو بھر میں تم پرچار کرو, ان کی پرسنتا کے لیے یہ کوشش ہے اور کچھ نہیں. اور اسی لیے کوئی بھی ویکتی جو پرمپراگت اس پستک کا سار اینڈ دیر اٹ ڈز ناٹ ڈیویٹ ایون سلائٹلی فرام دی ریویلڈ سکرپچرز, یہ جو بھی ہم نے یہاں پرستوت کیا ہے ایک ملی میٹر ڈیویشن نہیں ہوتا ہے پرمپرا سے, اتنا گارنٹی کے ساتھ پربھوپاد کہہ رہے ہیں. اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ جو بھی اس کو جیسا ہے ویسا شرمن کیا ہے, جیسا ہے اس کو صحیح بھاونا سے اس کو سویکار کیا ہے, ان کے جیون کو دیکھیے آپ. نتیانند پربھو کی کرپا سے 2001 جگہ مادہ ہی ادھار ہو گئے, اور وہی نتیانند پربھو کی کرپا سے ان کے سنسیئر پرامانک بھکت پربھوپاد جیسے ویکتی ہزاروں ہزاروں جگہ مادہ لوگوں کا ادھار ہو گیا. صرف ان کا ادھار نہیں ہو گیا بلکہ انہوں وہ بھی آچاریہ بن کر پورے دنیا کا ادھار کر رہے ہیں ایسے لوگ. یہ ثبوت ہے, یہ ثبوت ہے کہ پرفیکٹ ڈسپلن سکسیشن کو ہمیں وہ ملی ہے. وہ تو اٹ ڈز ناٹ ڈیویٹ ایون سلائٹلی فرام دا ریویلڈ اسکرپچرز, تھوڑا بھی ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے. اور اسی لیے اینی ون ہو فالوز ان دا ڈسپلک لائن, اس پرمپرا کا جو بھی अनुकरण करेगा, अनुसरण करेगा, विल बी एबल टू रियलाइज द एसेंस ऑफ दिस बुक. इस चैतन्य चरितामृत का सार वो स्वीकार कर पाएगा सिंपली बाय द मेथड ऑफ ऑरल रिसेप्शन. सिर्फ ध्यान पूर्वक श्रवण करके, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करके ये सारे पुस्तक जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऑफ वैदिक लिटरेचर, जो ब्रह्मा शिवजी इनको भी दुर्लभ है, ऐसे ज्ञान को जिस इसके हृदय में उतर सकता है अगर इस तरह से वो श्रवण करेगा ध्यानपूर्वक. और फिर अभी पहला अध्याय के बारे में बोलना शुरू करते हैं. चैतन्य चरितामृत के पहले अध्याय में शुरुआत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने 14 श्लोक लिखा है जो परम सत्य की व्याख्या करती है. मंगलाचरण के रूप में 14 श्लोक लिखे हैं, पहला 14 श्लोक. अच्छा, उसके बाद 3 और श्लोक लिखे हैं संस्कृत में. ये और ये पहला 14 श्लोक संस्कृत में है, उसके बाद सब बंगाली में है. पहला 14 श्लोक संस्कृत में है जो परम सत्य का निरूपण करते हैं, एग्जैक्टली व्याख्या करते हैं. और उसके बाद जो 3 श्लोक है वो भी संस्कृत में है, जो वृंदावन के प्रमुख 3 प्रमुख विग्रह जो गौड़ीय वैष्णवों के पूजनीय विग्रह हैं, श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री राधा गोविंद देव और श्री श्री राधा गोपी जन वल्लभ या गोपीनाथ, संबंध अभिधेय और प्रयोजन मूर्ति, इन तीनों की व्याख्या. तो पहला 14 श्लोक परम सत्य का व्याख्या करता है और दूसरा जो 3 श्लोक है वो इस आराध्य देव के गौड़ी वैष्णव के उनका गुणगान करते हैं. तो द फर्स्ट ऑफ द 14 वर्स इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ. पहला श्लोक जो आज शायद हम शुरू करेंगे इसमें परम सत्य का वो स्वरूप है, एक्चुअली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ परम सत्य है. क्या ये सब परम सत्य, इसका निरूपण पहले श्लोक में हुआ है. एंड द एंटायर फर्स्ट चैप्टर इज एक्चुअली डिवोटेड टू दिस सिंगल वर्स. पहला अध्याय पूरा जो है चैतन्य चरितामृत का, इस 14 श्लोकों का जो पहला श्लोक है उसका तात्पर्य. हाँ, और क्या ये क्या वर्णन करता है पहला श्लोक, विच डिस्क्राइब्स लॉर्ड चैतन्य इन ए 6 डिफरेंट ट्रांसेंडेंटल एक्सपेंशन. चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार 6 रूप से प्रकट होते हैं और लीला अपना आस्वादन करते हैं. श्री चैतन्य महाप्रभु 6 रूप से प्रकट हुए हैं, साथ में एक साथ. और वो अगर कोई समझ गया तो वो बड़ा भाग्यवान व्यक्ति हो. 6 प्रकार से कैसा श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं और आस्वादन करते हैं अपनी लीला का. और पहला स्वरूप क्या है, पहला स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु का वो है गुरु. वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशम से तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संज्ञकम. 6 स्वरूप में प्रकट होते हैं. पहला स्वरूप है गुरु के रूप में, जो 2 रूप में प्रकट होते हैं, वो है दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु. गुरु तत्व जो है वो भी भगवान से अभिन्न है, इसीलिए हम लोग हर रोज गुरु वंदना में कहते हैं साक्षात हरित्रेन समस्त शास्त्रेर उक्तः तथा भाव्यत एव सद्भिः. साक्षात हरित्वेन, वो साक्षात हरि हैं. क्यों? क्योंकि उनका उद्देश्य और भगवान का उद्देश्य में कोई अंतर नहीं है. नमा ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले. कृष्ण प्रेष्ठाय, सबसे कृष्ण को क्यों प्रिय है, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य और कृष्ण का कोई अंतर नहीं है. दोनों का आंदोलन मिशन एक ही है, दोनों का उद्देश्य एक ही है इस संसार में आने का. कि किस प्रकार बुद्ध जीव वापस धर्म संस्थापनार्थ आया। संभवामी युगी युगी भगवान आते हैं लोगों को अपने बारे में ज्ञान देने के लिए, और गुरु का उद्देश्य भी वही है। आचार्य माम विजानी या न अवमन्यत कर हिचे न मर्त्य बुद्धिया असूयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान इसीलिए भागवत में कहते हैं उद्धव को, आचार्यन माम विजानिया, आचार्य को मेरे समान समझो, न अवमन्यत करिचित, कभी उसकी अवहेलना मत करो, निंदा मत करो। क्यों? न मर्त्य बुद्धिया असूयेत। मर्त बुद्धि मतलब भौतिक बुद्धि क्या होता है, क्या ऐसा क्या कर रहा है, मैं भी तो वही कर रहा हूं ना, थोड़ा अच्छा नृत्य करते हैं, हम भी थोड़ा नृत्य कर लेते हैं, इतना सम्मान क्यों देना चाहिए लोग उसको। स्वाभाविक रूप से ऐसा लगता है कि गुरु को इतना सम्मान मिलता है, तो वही आदमी है, थोड़ा पहुंचा होगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा पहले ही ज्वाइन किया होगा इस आंदोलन में, और मैं भी कोई कम नहीं हूं। स्वाभाविक रूप से मर्त्य बुद्धिया असूयेत, ये असूया उत्पन्न होता है। सर्वदेव मयो गुरु, तो पहला स्वरूप गुरु का है, और फिर शिक्षा गुरु, दो प्रकार के गुरु बताए गए, दोनों एक ही समान हैं, क्योंकि दोनों परम सत्य के ही स्वरूप हैं। शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, दीक्षा गुरु मतलब जो दीक्षा पूरा जिम्मेदारी लेते हैं, और शिक्षा गुरु मतलब जो हमको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में मदद करते हैं। फिर भक्तों के बारे में, वंदे गुरुन ईश भक्तान, हर एक भक्त में श्री चैतन्य महाप्रभु की है ना, भक्त भी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के ही विस्तृत रूप है एक तरह से, एक तरह से परम सत्य के अलावा कुछ है ही नहीं। ममैव अंश जीव लोके जीव भूत सर, ममैव अंश, अंश के रूप में भक्तों के द्वारा भी भगवान प्रकट हो, जैसे श्रीवास ठाकुर पंचतत्व हम लोग जो प्रणाम करते हैं ना, पंचतत्व पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमानी भक्त शक्तिकम, तो इस तरह से। फिर और दो प्रकार के भक्त हैं, नए भक्त और प्रगतिशील भक्त। फिर अवतार भगवान के, वो भी भगवान से अभिन्न है। फिर अवतारों में भी तीन प्रकार के बताए गए हैं, भगवान की शक्ति का अवतार, उनके गुणों का अवतार, और उनके अधिकृतता का अवतार, और इस तरह से अलग अलग रूप से वर्णन किया गया। और अब हाँ, ये सब छह तत्व में जो प्रकट होते हैं ना, वो सब चैतन्य महाप्रभु ही हैं। कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, चैतन्य महाप्रभु है मतलब क्या, एक गुरु भी चैतन्य महाप्रभु नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो तत्व जो है गुरु तत्व वो एक ही है, उसको वर्णन अभी और वर्क करेंगे। तो पहले श्लोक में कहते हैं, ये 14 श्लोक भी आप सुनेंगे तो बड़ा महोद मधुर है। पहला 6 श्लोक, अच्छा ये 14 श्लोक जो है, 14 श्लोक का मंगलाचरण है। मंगलाचरण में तीन भागों में बांटा गया है, कोई भी मंगलाचरण तीन, एक तो है आशीर्वचन, आशीर्वाद देते हैं जो लिखने वाले, आशीर्वाद जो सुनने वाले हो, तुमको तुम्हारा भलाई हो, ऐसा ऐसा भलाई होगा, आशीर्वचन। दूसरा है वस्तु निर्देश, कि इस पुस्तक में मैं जो तत्व का वर्णन करना है वो कौन सा तत्व, क्या क्या बोलने वाला हूं इस पुस्तक में। और फिर तीसरा प्रणाम, हम प्रणाम करते हैं, तो मंगलाचरण का तीन उद्देश्य है, एक प्रणाम करना जिनकी कृपा से हम लोग कुछ लिख पा रहे हैं, दूसरा वस्तु का निर्देश कि क्या वस्तु का वर्णन होने वाला है इस पुस्तक में, और तीसरा है आशीर्वचन, क्या फायदा होगा जो भी इसको सुनेगा, कैसे उनकी कृपा मिले। तो ये 14 श्लोक है, पहला श्लोक है, और 14 जो है संस्कृत में है, वंदे गुरून ईश भक्तां ईशां ईशावतारकां तत्प्रकाशंश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। मैं दंडवत प्रणाम करता हूं। पहले सामान्य रूप से प्रणाम करते हैं और फिर खास रूप से अपने इष्ट देव को प्रणाम कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। पहले श्लोक में सामान्य प्रणाम और दूसरे श्लोक में खास प्रणाम। तो वंदे गुरुन, मैं सबसे पहले सारे गुरुओं को प्रणाम करता हूं, गुरु वर्ग को प्रणाम करता हूं। वंदे गुरुन प्लूरल में है। प्लूरल क्यों है गुरु का? क्योंकि गुरु तत्व एक ही है, गुरु हजार हैं इस भौतिक संसार में। हो सकता है गुरु हजार हैं। जो भी जिसका उद्देश्य चैतन्य भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और गुरु कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्ण एकम शरणम व्रज, बस वो गुरु है। पर व्यवहारिक रूप से उनका हमारा व्यवहार अलग अलग हो सकता है। दीक्षा गुरु के प्रति हमारा व्यवहार अलग है, शिक्षा गुरु के प्रति हमारा व्यवहार अलग है, वर्तमान प्रदर्शक गुरु के प्रति हमारा व्यवहार अलग होगा। पर वो गुरु तत्व एक ही है। जो भी हमको कृष्ण के पास ले जा रहे हैं वो गुरु है, वो गुरु है। जैसे विष्णु स्वामी संप्रदाय के महान एक आचार्य हो गए बिलु मंगल ठाकुर। बिलु मंगल ठाकुर अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, उसमें सबसे पहले कहते हैं चिंतामणि। श्लोक का शुरुआत है चिंतामणि से। और चिंतामणि कौन थी? एक वेश्या थी जिससे वो पहले भक्ति में आने से पहले आसक्त थे। वो चिंतामणि एक वेश्या थी और चिंतामणि उनके वर्तन प्रदर्शक गुरु बन गई। वो तो क्यों चिंतामणि? क्योंकि बहुत आसक्त थे। एक दिन उनके पिताजी का ये था, क्या बोलते हैं, श्राद्ध। पिताजी का श्राद्ध है और वो पंडित आया, बोला जल्दी जल्दी करो, वो भाग गए वहां से। बोले तुम लोग करो, पंडित लोग तुम ही लोग सारो, पिताजी को कर दो आप, मुझे बहुत अर्जेंट है, मैं जाना हूं। क्या ये पागल है, इतना पागल है, पूरी गांव निंदा करती थी इस व्यक्ति की। बोले इतना आसक्त है इस चिंतामणि से। चिंतामणि जानी मानी वेश्या थी वो। प्रभुपाद भागवत के तात्पर्य में लिखते हैं, जब भगवान द्वारका में प्रवेश किए तो बहुत सारी वेश्याएं उनको मिलने आई। और उसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि वैदिक संस्कृति में बहुत पहले कई सारे वेश्या जो थी वो भगवान की महान भक्त थी। तो अगर कोई भक्त है तो ऐसे व्यक्ति भले वो वेश्या, By the tricks of providence, किसी क्या पुराना करो क्या है पता नहीं, इससे वो उस बहुत ही निम्न स्थिति में आ गए हो, ऐसा उनको करना पड़े। पर भी अगर वो भक्त हैं तो उनको हम सम्मान देना चाहिए। तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी यही चिंतामणि का पूरे संक्षिप्त रूप में कहानी लिखते हैं। विष्णु स्वामी संप्रदाय के महान बिल्लु मंगल ठाकुर लीला शुक्र, जिन्होंने कृष्ण करणामृत लिखा है, जिसको श्री चैतन्य महाप्रभु हर रोज अपनी उच्च कोटि के आस्वादन, मतलब प्रेम में आस्वादन करते थे उसका श्रवण। उनके गुरु पहले पुस्तक का पहला श्लोक का पहला शब्द है चिंतामणि सोमगिरी में। सोमगिरी उनके दीक्षा गुरु थे। चिंतामणि क्यों? तो ये जब गए एक दिन उससे मिलने गए, बारिश आ रहा था, नदी में बड़े बड़े लाट आ रहे थे, कैसे तो पार करके गए, दरवाजा बंद था, छलांग मार के गए, कैसे होता कांच फोड़ के अंदर घुस गए, क्या खून आ गया अंदर ही, इतना खून आ रहा था, पहचान भी नहीं पाए। चिंता बड़ी, बोले खून आ गया भूत जैसा। बाद में देखे तो अरे बड़े तुम ऐसी स्थिति में भी तुम यहां आ गए। तो अगर प्रामाणिक रूप से भक्त भगवान की शरणागत हो और किसी तरह से बाधा हो तो कहीं से भी भगवान या गुरु जो है हमको मदद करके खींच के ले आते हैं उनके पास। तो इस वेश्या के मुंह से निकला कि बाप रे, इतना क्या बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, डिटर्मिनेशन, दृढ़ता। अरे इतना दृढ़ता से अगर तुम भगवान की भक्ति में लग जाते ना, अब तक महान संत बन गए होते तुम और भगवान प्राप्त हो गए होते तुमको। ये वाक्य उस समय बड़े बड़े थंडरबोल्ट, क्या बोलते हैं, बारिश में वज्र ऐसा धाप धूम बादल लग रहे थे, पर ये जो शब्द पूरा सीधा खड़ उनके हृदय में प्रवेश कर गया, बिलमंगल ठाकुर के हृदय में। एकाएक उनके हृदय में एकदम वैराग्य हो गया। एग्जैक्ट सही बात बोली है, क्या पागलपन। एक्चुअली वो एक्चुअली ब्राह्मण परिवार के थे, अच्छे कुल के थे, पर आदत आदत से फंसे हुए थे। एकाएक निकल पड़े वो, निकल पड़े वो। फिर भी कंडीशनिंग ऐसा है, इंद्रिया ऐसी है, जाते 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 फिर से आसक्त हो गए। एक ब्राह्मणी को देखे और बहुत सुंदर थी तो सीधा उनके पीछे पीछे चले गए, और ब्राह्मणी घर में गई और उनके पति महान भक्त थे ब्राह्मण, तो कहने लगे देखो पीछे पड़ गया ये साधु कौन, और सीधा गए। तो साधु ने कहा, ब्राह्मण ने कहा कि क्या चाहते हो आप। नहीं मैं एक मेरी इच्छा है। बोला आप सारी इच्छा रे, अतिथि देवो भवा, और खास करके साधु आप जैसे साधु आए घर में आए, जो भी इच्छा आप पूर्ण करेंगे। बोले आपकी पत्नी के साथ मेरा एक रात निकालना है। अब आप में से कोई सोचे कोई ऐसा बोले, एक तो है साधु के रूप में आए और सीधा सीधा मुंह पे बोले कि आपकी पत्नी के साथ एक रात मेरे को बिताना है, बस इच्छा पूर्ण करोगे। हमें तो ब्राह्मण भी बहुत उच्च कोटि का भक्त था, वो बोला कि नहीं भगवान अलग अलग तरीके से मेरी परीक्षा ले रहे हैं, ठीक है। और इनको बोले कि हाँ ठीक है। और बिलवंगल था मतलब होने के बावजूद भी फिर से वो कंडीशनिंग नहीं जाता देखे। और जैसे आए कमरे में तो माता जी को कहा कि आप से क्या पिन है ना, बोले वो दो पिन मेरे को दीजिए, लिए और आंख फोड़ लिए दोनों। एक्चुअली वो कुछ लोग उनको सूरदास बोलते, सूरदास जो है जन्म से अंधे थे, पर बिलमंगल ठाकुर अपने आप को बाद में अंधा किए, बोले आंख फोड़ लिए, बोले ये चीज जो मेरे को भगवान से अलग ले जा रहा है, इतनी दृढ़ता थी उनके अंदर भगवान को प्राप्त करने की कि जो भी चीज भगवान की जो प्राप्त करने से प्रतिकूल है मेरे को ले जा रहा है फोड़ डालो उसको। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी लिखते हैं हम उसका अनुकरण नहीं कर सकते। नहीं तो हर रोज फोड़ना पड़ेगा हमारे आंखों को, क्या क्या फोड़ेंगे, कान फोड़ना पड़ेगा, सर फोड़ना पड़ेगा, क्योंकि सर में ही सब विचार आते हैं। तो सब कुछ बचेगा ही नहीं, सब फोड़ते रहेंगे। तो अनुकरण नहीं कर सकते पर अनुसरण करना चाहिए महान आचार्यों का, कि भाई इतनी दृढ़ता कि भगवान की भक्ति इसी जन्म में मुझे प्राप्त होना चाहिए, उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अरे लोग इस जीवन में कुछ जगह प्राप्त करने के लिए किसकी किसके जूते चाटने के लिए तैयार है, किसको किसको खुश करने के लिए अपना सारा स्वाभिमान सारा सब कुछ साइड में रख के कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी को भी कुछ चापलूसी करने के लिए तैयार। तो क्या भगवान को प्राप्त करने के लिए चार लोगों को सम्मान देके ठीक है भाई ठीक है तुम मान, क्या तकलीफ है। पर नहीं, सबसे बड़ा बाधा है हमारा अहंकार। अहंकार मूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तृणादपि सुनिचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। नहीं कर पाएंगे इसको तो फिर कीर्तनीय सदाहरि नहीं होगा। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं भजन्ति अनन्य मनसो सततम कीर्तयन्तु माम, सततम कीर्तयन नहीं होगा, महात्मा नहीं बन पाएंगे जब तक। और ये सब ये चारों का सार एक ही है, तृणादपि सुनि तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान, जो भी सार एक ही है अहंकार। ये अगर जिसने त्याग दिया भगवान उसको प्राप्त करना बड़ा विषय, और करोड़ों करोड़ों जन्मों से। और इसीलिए ये ही अहंकार कभी कभी गुरु तक भी पहुंच जाता है। भाई ठीक है वैष्णवों के साथ हमारा, अरे गुरु के साथ भी पहुंच गया, और धीरे धीरे अंत में वो जाके भगवान के प्रति ईर्ष्या है। अंततः ये ईर्ष्या जो है, किसी व्यक्ति से भी अगर हम ईर्ष्या करेंगे तो एक्चुअली भगवान के प्रति ईर्ष्या है। क्यों? यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेववा तत्तदेवावगच्छत्व मम तेज अंश संभवम। जिसके अंदर भी कोई भी अच्छे गुण है जो लोगों को आकर्षित करती है वो अंततः कृष्ण से ही आ रहा है। कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक, कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक। और किसी के अंदर कुछ अच्छे गुण है, बोलने में बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सुंदर है, यही तो आकर्षण करते हैं ना भगवान, भग यानी ऐश्वर्य। कोई बोलने में है, कोई विद्वत्ता है, कोई क्या बोलते हैं, कोई देखने में बहुत सुंदर है, किसी कोई बड़ा यशस्वी है, कोई बड़ा शक्तिशाली है, अलग अलग प्रकार के से प्रदर्शन होता है, अपने अपने कर्म के अनुसार भगवान की जो शक्ति उसको मिलती है उसको हम सम्मान देना चाहिए उस शक्ति को, क्योंकि ओरिजिनल सोर्स वहीं से है वो। पर ईर्ष्या करेंगे तो इनडायरेक्टली हम डायरेक्ट भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। वो ही मूल कारण है जो हमको यहां लाया है। इस तरह से वंदे गुरुन, मैं गुरुओं को प्रणाम करता हूं और ईश भक्तान। एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा क्या है, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। भेद क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण है अन्य, तो कृष्ण जो है एक ही है, स्वयं भगवान। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भगवान के अलावा और कोई दूसरा भगवान हो ही नहीं सकता, भगवान एक ही है 101%। और वो भगवान कृष्ण ही है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है। दूसरा उनकी शक्ति है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति रस्मात। जब भगवान आनंद लेना चाहे, हम जो छोटे मोटे जीव हैं हमको आनंद तो तुच्छ चीजों में मिलता है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनका आनंद ऐसे छोटी मोटी चीजों में नहीं मिलेगा। तो भगवान ही अपनी अंतरंग शक्ति से विस्तृत करते हैं राधा राधा रानी। सो राधा कृष्ण प्रणय विकृति, प्रणय जब प्रेम का आस्वादन होता है, प्रेम करने के लिए दो लोग चाहिए, तो प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति रसना, आह्लादिनी शक्ति है वो। एकात्मानव, दोनों एक ही हैं, भगवान और उनकी अंतरंग शक्ति एक ही है। भूमि पूरा देह भेद अवगतव, तो देह भेद हुआ था, चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम च ऐक्यमाप्तम। वही राधा और कृष्ण जब साथ, जब वो परम सत्य दो हो जाते हैं, वो राधा कृष्ण हैं, और वो जो एक साथ आते हैं वो चैतन्य महाप्रभु। प्रकटम अधुना, अधुना मतलब अभी, तद्वयम दोनों च ऐक्यमाप्तम। ऐक्यम कैसे, राधा भावम द्युति सुवलितम, राधा रानी का भावना और द्युति अंग की कांति को स्वीकार किए हुए कृष्ण राता भावम द्युति सुमित नवमी कृष्ण स्वरूपम, कृष्ण स्वरूप है वो एक्चुअली, पर राधा रानी का भावना और राधा रानी के अंग की कांति को स्वीकार करके आए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो ये चैतन्य शक्ति, शक्ति मतयोर अभेद। भगवान कहते हैं गीता में नवे अध्याय का चौथा और पांचवा श्लोक में, मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। मेरा शक्ति जो है मेरे से अभिन्न, मैं सब जगह विराजमान हूं, मेरे शक्ति से मैं सब जगह फैला हुआ हूं। पर फिर कहते हैं न च मत्स्थानि भूतानि पश्चिमे योगमैश्वर, न च मत्स्थानि भूतानि, सब कुछ मुझमें है पर अलग भी है। तो अचिंत्य भेद अभेद तत्व, तो गुरु जो है वो भगवान है भी और नहीं भी। कैसे भगवान है, क्योंकि गुरु का उद्देश्य और भगवान का उद्देश्य एक ही है, बद्ध जीवों के प्रति, सबको वापस भगवान की सेवा में लगाना। इस तरह से गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और साइमल्टेनियसली गुरु और भगवान में अंतर भी है। जैसा शक्ति, जैसा सूरज की किरण जो है अलग है या नहीं है, सूरज और सूर्य का किरण, सूर्य में गर्मी है किरण में भी गर्मी है, सूर्य के अंदर प्रकाश है किरण में भी प्रकाश है, सिर्फ इसमें मात्रा में थोड़ा अंतर है। सूरज अगर सूरज के पास चला जाए तो फिर गर्मी और प्रकाश दोनों को ज्यादा ही हो जाएगा, पर यहां थोड़ा बैठ के थोड़ा ताप, यू नो, सूर्य की किरण में थोड़ा अच्छा लगता है, ठंडी के दिनों में खास करके थोड़ा गर्मी और थोड़ा प्रकाश आता है। तो इस तरह से गुरु वंदे गुरु, गुरु के अंदर भी वो गुरु भी कृष्ण से अभिन्न नहीं, अभिन्न है और भिन्न भी है। गुरु तत्व वो जहां से भी वो गुरु तत्व हमको मिले, भक्तों के द्वारा मिले, गुरु के द्वारा मिले, और जहां खास करके साफ साफ प्रकट होता है उसको तो और भी हम सम्मान देना चाहिए। वंदे गुरुन ईश भक्तान, और गुरु का काम क्या है? भक्त बनाना। ईश भक्तान, सबको भगवान के पास ले जाना, ईश भक्तान, भक्तों की संख्या बढ़े, बस यही एक उद्देश्य है। जैसा प्रभुपाद जी को वो बस कंडक्टर मिला था, अप्रभा जी बोल रहे थे हाँ हजारों मंदिर होंगे, हजारों भक्त होंगे, क्योंकि उनको मालूम है महाप्रभु की है, महाप्रभु ने ऑलरेडी बोल दिया पृथ्वी ते अच्छे जो नगर आलिका, और मैं एक पुतले के समान में शरणागत हो रहा हूं, जब चाहे जितना चाहे कराएंगे, मेरे से कराएंगे ठीक है, नहीं कराएंगे तो ठीक है उनकी इच्छा, निमित्त मात्र भवा, हमको निमित्त बनना है, बस शुद्ध रहना है ताकि जब चाहे जितना चाहे भगवान हमको उपयोग करें उनके आंदोलन में लगा, और उसके आनंद हमको भी मिलता है और दूसरों को भी मिलता है, ये उनकी मानता है। तो वंदे गुरुन गुरु के रूप में आते हैं, ईश भक्तान भक्तों के रूप में आते हैं, ईशम साक्षात भगवान कृष्ण, ईशावतार कान अलग अलग अवतार के रूप में आते हैं, सारे अवतारों का उद्देश्य एक ही है। तत्प्रकाशंश्च भगवान का विस्तृत रूप, नित्यानंद प्रभु जो हैं भगवान के दास भी हैं और भगवान से अभिन्न भी हैं। तत्प्रकाशंश्च भगवान का विस्तृत रूप भौतिक आध्यात्मिक संसार में, और तत्शक्ति ही श्रीमती राधा रानी या द्वारका में उनकी पटरानी है, तत्शक्ति ही जो भगवान नारायण के रूप में आते हैं तो लक्ष्मी जी, राम के रूप में आते हैं तो सीता माता। इस तरह से तत्शक्ति ही कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्, ये सब कुछ मिलके कृष्ण चैतन्य है, ये सब कुछ कृष्ण ही है और साइमल्टेनियसली कृष्ण नहीं है। कृष्ण सबसे पहले एको बहुश्याम, अपने आप को विस्तृत किए आनंद लेने के लिए, आनंदमय अभ्यासा, और अपने आप को विस्तृत किए तो एक रूप से सभी कृष्ण है, कृष्ण की ही शक्ति है। पर जब कृष्ण की शक्ति के बीच में हम लोग अपने अपने अहंकार को डाल देते हैं तो वो माया बन जाता है। जब ये चीज भगवान की सेवा में लगा दिया तो ये योग माया हो गया है। पर इसी चीज को अगर मैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए लगा दूंगा यही चीज महामाया बन गया। भगवान की शक्ति एक ही है एक्चुअली, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति एका, एक ही शक्ति है वो। पर जब अपनी भोग के लिए उपयोग करने के जाएंगे तो वही माया जो है महामाया बन के लात मारती। अच्छा मेरे प्रभु तो एक ही है, तू प्रभु समझता है, चल आ जा पास में आ, और ऐसा बुद्धि भ्रष्ट करती है, ऐसे लगता है कि ये तो मेरी है, लात मारने के बाद भी लगता है एक बार लग गया शायद दूसरी बार नहीं मारेगी, दूसरी बार थोड़ा प्रेम करेगी फाड़, और एक बार शायद तीसरी बार। ओ माया आवरणात्मिका शक्ति और बाद में प्रक्षेपात्मिका, लात मारती हो। गधे लोगों को देखे होगे, गधा जब मैथुन करने गधी के पीछे भागता है, पीछे पीछे भागता, हमने देखा है एक्चुअली, हम लोग नवनरसिंह क्षेत्र गए थे अहोबलम में, सब महाराज जी जा रहे थे, सारे ब्रह्मचारी लोग जा रहे थे, चलते चलते जा रहे थे तो सब लोग हट गए क्योंकि एक गधी भाग गया है। क्यों भाग रहे? क्योंकि उसके पीछे गधा पड़ा, भाग रहा और सब देख रहे थे। जैसे वो पास आया इतना जोर से मारता है मुंह पे मारती है वो, तो फिर भी वो भागता रहा, छोड़ा नहीं, लात खा रहा है पर फिर भी लगता है नहीं अभी मिल जाएगी। ये माया है एक्चुअली। जब तक हम भोग करने की कोशिश करेंगे, ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बड़ो, वो भावना रहेगी तब तक लात खाते रहेंगे। पर जिस दिन समझ जाएंगे और बोलेंगे प्रभु आपकी शरण आया हूं, तो वही योग वही महामाया जो लात मार रही थी वो बोलेगी ये देख ये तरीका है भगवान की सेवा करने का, यही फूल जो आज तक तू महामाया के सर पे लगाने के लिए भाग रहा था, अभी भगवान को चढ़ा दे, ये तेरे को पास में ले जाएगा। योग माया मतलब क्या? भगवान के पास ले जाने की शक्ति, और महामाया लात मार के दूर भगाने की शक्ति। तो यही फूल महामाया के रूप में लात मार रही थी हमको, पर यही फूल योग माया बन जाएगी जब हम समझेंगे। भगवान कहते हैं ना गीता में, भोक्ता आरम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर सर्वदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मुचि। भोक्ता समझकर भगवान को अर्पण करेंगे तो आनंद भी मिलेगा और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति भी होगी। और वही अलग जाने की कोशिश करेंगे, लाड भी खाएंगे और फिर लगेगा नहीं शायद पांच पैसे का सर्कस उसको लगा, मेरे को नहीं लगेगा शायद, या एक बार लग गया दूसरी बार मैं अपनी बुद्धि से ऐसा कुछ नया प्लान स्कीम बनाऊंगा कि लात नहीं लगेगा इस बार। यह आवरणात्मिका शक्ति हो, माया लाठी खाए। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बार बार लाठी खाए, सुधरेंगे नहीं हम, सुधरते नहीं हम जब तक ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जी कृष्ण की दूसरे स्वरूप गुरु की कृपा वैष्णवों की कृपा जब नहीं होगी और नम्रता पूर्वक उसको स्वीकार नहीं करेंगे तब तक नहीं हो, तब तक मार खाते रहो। एक न एक दिन सुधरेंगे, थोड़ा शॉर्ट सैंपल में नहीं सुधरे तो बड़ा सैंपल देना पड़ेगा। तो इस तरह से कल और भी दूसरा, और कल जो हम चर्चा करेंगे वो वैयक्तिक रूप से पहला सामान्य प्रणाम और दूसरा है जो है खास प्रणाम, वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदित, उसके बारे में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण। श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। किसी का कोई प्रश्न हो या कोई?